सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
हम सातवां अध्याय देख रहे हैं। सातवें अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और भगवान को छोड़कर और कौन हमें बता सकता है भगवान के बारे में, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने बारे में तुमको ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपको हमारी अपरोक्ष अनुभूति हो जाए, आप हमारे तक पहुँच जाओ, ऐसा मैं ज्ञान दूंगा। फिर भगवान कहते हैं मेरी दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है दूसरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के अंदर आठ चीज़ें हैं, पांच तन्मात्रा हैं मन बुद्धि अहंकार, आठ चीज़ें हैं। और परा वो सेंसिएंट है, जीव भूता है। परा और अपरा प्रकृति जो है वो सारे जीवों का गर्भस्थान है, योनि है। जितने भी इस दुनिया के अंदर जीव हैं वो सब के सब ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से बने हैं। इसके भगवान बताते हैं कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही सारे जगत का उत्पत्ति और प्रलय कारण हूँ। तो आप ऐसा समझो कि ईश्वर है, भगवान है और उनकी दो प्रकृति है परा और अपरा। इस परा और अपरा प्रकृति के नियामक कंट्रोलर भगवान है और परा और अपरा प्रकृति से ही सारे जीवों की सृष्टि हुई है। अब भगवान यहाँ ये साफ कह देते हैं मत्तः परतरम नान्यत कस्य, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही अल्टीमेट कारण हूँ। आप ये मत सोचना कि भाई परा अपरा प्रकृति मेरी है, मेरे ऊपर भी कोई नियामक होगा, ऐसा नहीं है। मत परतरम ना अनित किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही सारे विश्व का कारण हूँ। उसके बाद भगवान बताते हैं कैसे मेरे को देखोगे। तो उन्होंने बताया पानी के अंदर रस देखो, सूर्य और चंद्र के अंदर उसकी प्रभा देखो, इस किस्म से उन्होंने कई श्लोक के अंदर कैसे हम आँख खोल कर भगवान को देख सकेंगे ऐसा उन्होंने बताया। फिर वो आगे जाके बताते हैं कि आपके मन के अंदर जो भाव उठते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक भाव जो होते हैं, ये तीनों भाव भी मेरे कारण ही हैं, मेरे कारण हैं। ये भाव मेरे में हैं, मैं उन भावों में नहीं हूँ। इसका मतलब है कि लोग जो हैं इन भावों के बस में, अज्ञानी लोग इन भावों के बस में होते हैं, मगर मैं इन भावों के बस में नहीं हूँ। तो हमारे भीतर जो भी वृत्तियाँ आती हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, वो सब भगवान से आती हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं और भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सब भूतों का जो आत्मा है, ऐसे जो भगवान है जो सबकी आत्मा है और जो गुणों से अतीत हैं, गुणों से अतीत मतलब सत्व रजस तमस गुणों से अतीत परे हैं, संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला मैं हूं। जो मेरे को जान लेता है उसका संसार खत्म हो जाता है, मगर मेरे को कोई पहचानता नहीं है, इसलिए भगवान को बहुत दुख हो रहा है। अगर आप मेरे पास आ जाओगे संसार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, मगर जब मैं साकार रूप में आता हूं तब भी लोग मेरे को पहचान नहीं पाते हैं, बहुत भगवान को दुख होता है। तो भगवान बताते हैं किस कारण से लोग मेरे पास नहीं आते हैं, क्या कारण है। तो त्रिभि गुणमयी भावयी ए भी सर्विदम जगत मोहितम, ये सारा का सारा जगत मोहित है, डेल्यूटेड है। किससे डेल्यूटेड है? त्रिभि तीन गुणमयी माया जो है जिसके तीन गुण हैं सत्व रजस तमस, भावयी इन भावों से सर्वविदम जगत जो है मोहित हो रहा है। ना भी जनाती मेरे को वो पहचान नहीं पाते, मेरे को जान नहीं पाते हैं कौन है मैं। परम अव्ययम मैं सुप्रीम हूँ, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। और अव्ययम बाकी सारी चीज़ें दुनिया में नाशवान हैं मगर मैं नाशवान नहीं हूँ। अव्ययम अच्छा तो मोह क्या करता है? बोले मैं जो है हमारे विवेक को शून्य कर देता है, हम विवेक नहीं कर पाते हैं। देखो ना हमारा विवेक सब शून्य हुआ है, हम किसका विवेक करते हैं? दो अनित्य चीजों का विवेक करते हैं, हमने कभी नित्य अनित्य का विवेक नहीं किया। तो मोहित है ना हम सब मोहित हैं। तब इसके बाद प्रश्न आता है भगवान आपकी ये जो ऐसी त्रिगुणमयी माया है इसको कैसे पार करें, उसका भी साधन बताओ, अगर हम फंसे ही रह गए तो कैसे आप तक पहुंचेंगे। तो भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। बोले इस माया को पार करना बहुत दुस्तर बहुत कठिन है मगर एक तरीका है, आप जो है मेरे को सरेंडर करो, मेरी शरण में आ जाओ तो जो है मैं आपको इस माया से पार कर दूंगा। देखो एक एक महात्मा ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं माया का और परमात्मा का रिलेशन का कि आपको इतनी सहज से समझ में आ जाता है जैसे एक कुत्ता और कुत्ते का मालिक है। कुत्ता जो है किसी को बाहर के लोगों को देख के भौं-भौं कर रहा है, कुत्ता का मालिक बोलता है चुप कर, चुप कर देता है, उसकी माया है। ठीक भगवान के पास भी जो है ऐसी शक्ति है, माया कहते है रुक जाओ इसको पार होने दो, वो पार हो जाता है। जो भगवान की शरण में जाता है वो पार हो जाता है। अच्छा यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस माया से तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण में क्यों नहीं आते? भगवान की शरण में अगर हम जाने से ही तर जाएंगे तो लोग जाते क्यों नहीं है? तो इस पर भगवान कहते हैं नाम आम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञानम आसुरम भावाश्रिता। बोले जो दुष्कृतन है, दुष्कृतन मतलब जो पाप करने वाले हैं। भगवान दो शब्द यहाँ व्यवहार कर रहे हैं, इस श्लोक में दुष्कृतना है और दूसरे इसके बाद वाले श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान कहेंगे सुकृतना पुण्य करने वाले। तो जो पाप करने वाले हैं तो ये कैसे हैं पापी लोग, दुष्कृतना कैसे हैं? चार किस्म के हैं भगवान कहते हैं। ये चार किस्म के लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कौन है भाई? मूढ़ा दुष्कृतना माम न प्रपद्यन्ते। मूढ़ा इनको परमात्मा कोई ज्ञान ही नहीं है, वेदांत नहीं जानते हैं, कहने पर भी बोलते हैं कि अरे गीता अभी अभी तो 30 साल उम्र हुई है, अभी थोड़ी ना हमारा पढ़ने का समय है, हम रिटायर करेंगे तब आएंगे है? ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये लोग क्या हैं? अब आप अपने आप सोच लीजिए इनको भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं है? तो इनका प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध मतलब क्या अटक रहा है भगवान की तरफ आ जाने? उनका पाप कर्म जो है उनका प्रतिबंध है, उनका पाप कर्म प्रतिबंध है। वो पाप कर्म क्या कराता है? वो आपको जगत की तरफ ले जाएगा। आप लोग बुरा नहीं मानना, जो आज के प्रवचन में नहीं है वो कहाँ है? सोचो किसी कारण से जो है फंसे हुए हैं जगत में ना, कोई एक कारण है जिसके कारण जो है वो सत्संग में नहीं है, सत्संग को छोड़कर दूसरी जगह गए हैं, क्या कारण है? उनके कर्म उनको जगत की तरफ टान के ले गए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या मुक्ति मिलेगी? आप क्या सोचते हो, मुक्ति मिलनी चाहिए मूढ़ा को? नहीं मिलेगी। दूसरे, नराधमा दुष्कृतना माम न प्रपदंते। नराधमा, मनुष्य में जो अधम है, अधम है, ये मूढ़ा से थोड़े से बेटर हैं। थोड़े से बेटर मतलब इनके घर में ज्ञान की पुस्तकें मिलेंगी। आप उनके ड्राइंग रूम में जाओगे तो आपको गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र सब मिलेगा वहां पर। मगर पूछो उनसे, आपने इनको पढ़ा है? नहीं, हमने खरीद दिया है, अभी तो देखेंगे, अभी समय नहीं मिला है, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। मगर उनके कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है। और हमने एग्जाम्पल हम बराबर देते हैं कि ऐसे लोग अपने माता पिता को सत्संग में गेट पर छोड़ के जाएंगे, अपने बच्चों को जो है बाल विहार में छोड़ के जाएंगे, मगर खुद नहीं आएंगे। क्या ऑब्स्ट्रक्शन है उनका? पाप कर्म है उनके लिए। अभी उनका प्रारब्ध कहता है कि आपको भोगना है, आप जगत की तरफ चलो, वहां के अभी सुख दुख आपको भोगने हैं। अभी आपके पास में ये सुकृत करने का या सत्संग में आने का अभी आपका अधिकार नहीं है। दूसरा, तीसरे कौन है? माया आपृत ज्ञाना दुष्कृत न माम न प्रबदनते। इन्होंने गुरु से ज्ञान पाया, ये सत्संग में आते हैं, मगर इसके बाद बाहर जाके फिर जो है अपने लौकिक ज्ञान से, युक्ति से इस ज्ञान को काटते हैं। ज्ञान को काटते हैं मतलब भगवान ने जो कहा वो गलत है। कभी हो सकता है ऐसा? कभी कभी नहीं हो सकता। हमें एक बार बहुत दुख हुआ कि हमारे एक स्टडी क्लास में हम लोग इतना उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में कहा हमको ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहिए, तो एक आदमी ने कहा कि मेरे को जो है किसी अमेरिकन के यहाँ कुत्ता बन के जन्म लेना है। देखो अभी भी उनको जन्म लेना है, बताओ। हमने कहा भाई इस जीवन से मुक्ति पाओ, आप क्यों फिर कुत्ता बनना चाहते हो? मनुष्य का जीवन मिला, इतना अच्छा जीवन है, आप कुत्ता बनना चाहते हो? देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं लोग। ये क्या है? लौकिक युक्ति। ज्ञान जो है उसको काट दो। माया अपृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रित, चौथे दुष्कृत न माम न प्रबदनते। असुर स्वभाव है उनमें, क्रोध, दंभ, लोभ, ये इत्यादि सब चीजें हैं। उनका मन शुद्ध नहीं है, मन कठोर है, तो इनको भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो बिना सत्कर्म के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सत्कर्म के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप लोग सत्संग आपको मिल रहा है तो आप लोगों ने निश्चित पाप कर्म किए हैं, निश्चित पुण्य कर्म किए हैं, निश्चित पुण्य कर्म किए हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, परंतु जो पुण्य करने वाले नर श्रेष्ठ हैं वो क्या करते हैं सो बतलाते हैं। देखो, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। वो चार किस्म के लोग हैं। देखो, दुष्कृतना कहाँ जाते हैं? जगत की तरफ जाते हैं। सुकृतना किधर जाते हैं? भगवान की तरफ जाते हैं। देखो, जब आप पढ़ो ना, खूब मन लगा के पढ़ो, भगवान दुष्कृतना किसको कहते हैं, सुकृतना किसको कहते हैं, तो पुण्य करने वाले कौन से हैं? तो बोलते ये चार किस्म के लोग हैं। कौन कौन है ये? आर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, और ज्ञानी है। ये सब लोग भगवान के प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। आर्थ मतलब कौन? दुखी लोग हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, मगर धन से उनके दुख का निवारण नहीं हो सकता, वो आर्थ है। जैसे चोर, चोर का भय, या आप जंगल के बाहर में किसी कुटिया में रहते हो तो आपको जो है हिंसक पशुओं का भय। धन से थोड़ी ना कुछ आप कर सकते हो। आप पैसे बाहर रख दो, कोई आपका जो है शेर पैसे उठा के थोड़ी ना ले जाएगा। या कई ऐसे रोग होते हैं, धन है मगर उसका इलाज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं? हमारे भारतवर्ष के अंदर में हर नर्सिंग होम के नीचे में एक मंदिर होता है। जब कठिन रोग के लोग आ जाते हैं और डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर कहते हैं आप जो है भगवान से प्रार्थना करो। आर्थ पैसे हैं आपके पास में, मगर आप दुख का निवारण नहीं कर पाते हो। किसके पास जाते हैं? आर्थ, मेरे पास आते हैं। ऐसे जो है आर्थ भक्त हैं। ऐसे आर्थ भक्त हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, गजेंद्र है, द्रौपदी है, कुंती है। जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या चाहता है? जिज्ञासु चाहता है कि मेरे को भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, भगवान का मेरे को ज्ञान हो जाए। ज्ञान के लिए उसको क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, एक मन की शुद्धि चाहिए और दूसरा उसको गुरु चाहिए जो उसे तत्व का ज्ञान दे सके। इसलिए मन की शुद्धि के लिए और गुरु की प्राप्ति के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। ये हुआ जिज्ञासु, ये भी प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मेरी मन की शुद्धि हो जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब धन की कामना, जैसे ध्रुव मेरे को राज्य मिल जाए, ऐसे भी हैं। और चौथा कौन है? ज्ञानी, ज्ञानी मतलब विष्णु तत्वित, तत्व ज्ञानी, कोई कामना नहीं है, कृतकृत्य है, फुलफिल्ड, और कुछ नहीं चाहिए। तो चार किस्म के लोग जो हैं भगवान की पूजा करते हैं वो सुकृतन है, मतलब जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो वो पुण्य है, और अगर हम जगत की तरफ जाते हैं तो आप दिन में कितना पुण्य करते हो अपने आप हिसाब लगा लेना। अच्छा, अभी चार किस्म के भगवान आपने भक्त कहे हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है मेरे को ये भी बताइए जरा। जो आर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है, ये चार किस्म के जो भक्त हैं, इनमें आप किसको सबसे ज्यादा जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? तो 17वां श्लोक जो है उसका उत्तर देता है।
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः,
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः,
एक भक्तिर्विशिष्यते,
एक भक्ति विशिष्यते,
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्,
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्,
अहम् सच मम प्रियः,
अहम् सच मम प्रियः,
तेषां ज्ञानिनित्ययुक्तः, एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्तर्थम् अहम् सच मम प्रियः।
भगवान कहते हैं तेषाम, तेषाम मतलब इन चारों में, तेषाम ज्ञानी जो है वो कैसा है, ज्ञानी की प्रशंसा कर रहे हैं। बोले एक तो नित्ययुक्त है, दूसरा एक भक्ति है उसमें, और तीसरा जो है उसमें वो मम प्रिय है, और चौथा जो है उसका कारण ये है कि वो मेरे को बहुत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी ना अत्यर्थम, ज्ञानी जो है भगवान से बहुत प्रेम करता है, और भगवान भी कहते हैं मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। तो ज्ञानी की चार विशेषताएं यहाँ बताई हैं। तो इन चारों में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। चार में ज्ञानी सबसे उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, अत्यंत प्रिय हूं। ज्ञानी भगवान से बहुत प्रेम करता है और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय भी है। तेषाम ज्ञानी न विशिष्यते, ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अब एक एक करके हम देखते हैं। नित्य युक्त, नित्य युक्त का मतलब क्या है? सर्वदा मननिष्ठ है, उसका मन कहाँ है? सर्वदा मेरे साथ, नित्य युक्त है। ज्ञानी की निष्ठा 24 घंटे 365 दिन भगवान के साथ है, नित्य युक्त, ऑलवेज यूनाइटेड, नित्य युक्त। बाकी तीन कैसे हैं? बाकी तीन कौन से? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। आर्थ का जब काम हो जाता है फिर क्या वो मंदिर जाता है? अर्थार्थी, उसने धन की कामना की, धन मिल गया, उसके बाद फिर जाएगा? नहीं जाएगा। जिज्ञासु, जिज्ञासु भी जो है उसके अंदर उसका प्रेम बटा हुआ है। क्या जिज्ञासु नित्य युक्त है? क्या विचार कीजिए, कैसे वो नित्य युक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, जो जिज्ञासु है ना, उसके अंदर भी अभी वासना अभी है, वासना का सीड अभी भी बचा हुआ है। जिज्ञासु का मतलब है उसकी वासना बहुत कम हो गई है, मगर खत्म नहीं हुई है पूरी, थोड़ी सी वासना उसमें अभी भी है। उसको रस कहते हैं, वासना का रस है। वो रस कब जाता है? रस जब ज्ञान हो जाता है तो ये रस भी खत्म हो जाता है, फिर अब टोटली वासना मुक्त हो जाता है। तो ये रस क्या करता है? तो रस जो है विक्षेप करता है उसके मन को, विक्षेप करता है मतलब एजिटेट करता है उसके मन को। तो क्या हम उसको नित्ययुक्त कह सकते हैं? नहीं, वो प्रयास कर रहा है, अभी भगवान के साथ युक्त होने का प्रयास कर रहा है, मगर मन कभी कभी उसकी वासना के कारण भटक जाता है, इसलिए उसको हम नित्ययुक्त नहीं कह सकते। तो आर्त भी नित्ययुक्त नहीं है, अर्थार्थी भी नित्ययुक्त नहीं हुआ, जिज्ञासु भी नहीं हुआ। ठीक, अच्छी तरह से समझना, क्यों जिज्ञासु जो है नित्ययुक्त नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर वासना का अभी भी सीड है थोड़ा सा, और वो वासना कभी कभी उसको तंग करती है, एजिटेट करती है, उसको प्रयत्न करना पड़ता है कि अपने मन को एकत्रित करके भगवान की तरफ लगाए। एक भक्ति, एकांत भक्ति, सिंगल पॉइंटेड भक्ति, एक अंत, उसका एक गोल है, ऐसी भक्ति है ज्ञानी की। ज्ञानी की चार विशेषताएं बताई, एक पहला बताया नित्ययुक्त, दूसरा एक भक्ति। अच्छा, दूसरों की भक्ति क्या सिंगल पॉइंटेड है? आर्थ की, जिज्ञासु की, अर्थार्थी, क्या सिंगल पॉइंटेड है? एक भक्ति नहीं है, उनका प्रेम बटा हुआ है, संसार में भी है इधर भी है। आर्थ क्या करता है? दुखी है तब भगवान के पास गया है, मगर साथ साथ में संसार की तरफ भी उसका प्रेम बटा हुआ है। अर्थार्थी का भी वही हाल है, जिज्ञासु का भी वही हाल है। तो उनकी एक भक्ति नहीं है, और उनकी एक भक्ति रहती भी नहीं। कामना पूर्णी हो गई, भक्ति खत्म हो गई। हम गए थे भगवान हमको मकान दे दो, मकान मिल गया, मेरी भक्ति खत्म। अब फिर कोई दूसरी जरूरत होगी तब फिर जाएंगे हम। तो इसको तो हम एक भक्ति नहीं कह सकते ना। मगर भगवान जो है सबको प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। देखो, एक बच्चा है जैसे अपने पिता को से प्रेम करता है, पिता से चॉकलेट मांगता है, उसको मालूम है पिता मेरे को देंगे। वैसे ही भगवान जो है वो हमारे पिता हैं, हम भगवान से जो कुछ मांगते हैं वो दे देते हैं, चॉकलेट लेना ले लो। भगवान के लिए अर्थार्थी चॉकलेट है कि मेरे को नहीं मांग रहा है, ये थोड़े से पैसे मांग रहा है, नहीं थोड़े से दे दो। कितने मांग रहा है? ज़्यादा नहीं मांग रहा है, 1 मिलियन दे दो भगवान मेरा जीवन चल जाएगा, या 10 मिलियन दे दो, और क्या, और तो नहीं मांगता, उससे ज़्यादा मांगता ही नहीं है, ले लो। अर्थ चोरी का भय है, या क्या हमको शेर का डर है, या और कुछ हमको किसी रोग का है। अच्छा चलो, तुमको इस रोग से निरोग कर देते हैं, कर देते हैं, तो फिर क्या शरीर आपका बना रहेगा? शरीर तो फिर जाएगा, फिर कोई दूसरा रोग आएगा, एक रोग छूट गया दूसरा रोग आएगा। तो भगवान प्रार्थना जो हम लोग करते हैं ना, इसके तीन गति हो सकती है, तीन गति। एक तो आपने प्रार्थना की, हो सकता है आपकी प्रार्थना मान ली गई, ग्रांटेड, भगवान मेरे को ये चाहिए, भगवान कांचा ले लो, ठीक है हो गया। दूसरा ये हो सकता है, आपने मांगा केवल मेरे को $1,000 चाहिए, भगवान कहते हैं नहीं तुमको 10,000 चाहिए, तो यू टेक मोर। ऐसा भी होता है, हम जो मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। तीसरा ऐसा होता है कि भगवान सोचते हैं नहीं नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अभी हम नहीं देंगे, अभी समय ठीक नहीं है तुम्हारा, हम बाद में देंगे, मगर तुम जो मांगते हो उससे बेहतर चीज देंगे, बेहतर चीज देंगे। ऐसा भगवान करते हैं कई बार। कई बार आप लोग अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखिएगा, अनुभव को देखिएगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ऐसी चीजें घटती हैं। मगर भगवान जो दुख देते हैं, हर दुख से हमको ये अनुभव लेना चाहिए कि भगवान का ये एक दस्तक है, ठक 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 ठक, मुड़ो घूमो, कहाँ जा रहे हो, तुम दुख तुमको हो रहा है, तुमको अब घूमना चाहिए भगवान की तरफ। कहाँ से दुख मिल रहा है? संसार से मिल रहा है। क्यों बार बार संसार की तरफ जा रहे हो? हर दुख जो है हमारे जीवन की एक घंटी बन जानी चाहिए, अर सतर्क हो जाना चाहिए, क्या हो रहा है। ये संसार से मुड़ने के लिए हमारे पास दुख आते हैं। तीसरा, प्रियो ही ज्ञानी ने अत्यर्थम, अत्यर्थम तो अत्यंत। ज्ञानी भगवान से परम प्रेम करता है। हमने लालत भक्ति सूत्र में भी देखा ना, परम परम प्रेम स्वरूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम स्वरूपा। ये बहुत प्रेम करता है, इनका प्रेम नापा नहीं जा सकता। नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, इनका प्रेम नाप सकते हो कितना प्रेम है? नहीं, नहीं नाप सकते हम। उन लोगों क्या चाहिए? उन्हों केवल प्रेम करना है भगवान से। भगवान से लेना कुछ नहीं है, भगवान से कुछ लेना नहीं है, मगर भगवान से वो प्रेम भक्ति करते ही रहते हैं। और भगवान को ही पता नहीं इनको क्या दे, ये भी पता नहीं है। इतना मीराबाई, गोपी, ये सब तुकाराम वगैरह प्रेम करते थे, इनको क्या दें? ये भगवान को समझ में नहीं आता है। ज्ञानी क्यों प्रेम करता है? देखो, क्यों और प्रेम ये दोनों एक साथ उत्तर नहीं दिए जा सकते। क्यों प्रेम करता है? वो परम प्रेम है, वो निष्काम प्रेम है, उसकी कोई कामना ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए कि मुझे भगवान मिल जाए। नहीं, हमें भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, उनसे प्रेम करना, बस। और वो अगर एक क्षण के लिए भगवान को अगर भूल जाते हैं तो तड़पने लगते हैं, जैसे मछली जल के बाहर रह गई, ऐसा हाल हो जाता है उनका। अरे मेरे भगवान को मैं भूल गया। शंकराचार्य जी देखो हमारे वेदांतिन थे, मगर भक्ति उन बहुत भक्ति थी। बहुत से मंदिरों की पूजा विधि वगैरह सब लिख के वो चले गए, आज तक वो चल रहा है, उसी विधि के हिसाब से पूजा हो रही है। और चौथा, समम प्रिय। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी भक्त मुझको भी प्रिय है। अच्छा देखो, जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तब भगवान ने कहा वो अत्यंत प्रेम करता है, मगर भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैं भक्त को अत्यंत प्रेम करता हूं, केवल मम प्रिय इतना ही कहते हैं। मम प्रिय, मम प्रिय। महात्मा लोग कहते हैं, देखो इसको ऐसे समझो, जब बिल्ली का बच्चा जो है म्यू करके जब वो आवाज निकालता है, तो उसकी आवाज में जो दर्द है, जो मैं उसकी माँ के प्रति प्रेम है, उसके अंदर जो करुणा सी, उसके अंदर जो मधुर भाव है, वो टॉम कैट वैसा जो है कॉपी नहीं कर सकती। देखो कर सकती है, सोच के देखो। बिल्ली का बच्चा असहाय अवस्था, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, माँ आएगी तब उसको पकड़ के उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। उस समय जब वो चिल्लाता है, आवाज करता है, माँ को बुलाता है, उस आवाज के अंदर जो प्रेम है, जो मधुरता है, वो मधुरता जो है वो बिल्ली अपने बच्चे के प्रति नहीं कर सकती, वो ऐसी मधुरता नहीं ला सकती। उसी तरह से भक्त जितना प्रेम कर सकता है भगवान से, भगवान उतना प्रेम भक्त से नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट।
उदारा सर्वे वैते, उदारा सर्वे वैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्,
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्,
आस्थित सहि युक्तात्मा,
आस्थित सहि युक्तात्मा,
मामेवानुत्तमां गतिम्,
मामेवानुत्तमां गतिम्।
उदारा सर्वे वैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थित सहि युक्तात्मा, मामेवानुत्तमां गतिम्।
भगवान कहते हैं कि ये सबके सब उदार हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, सबके लिए कहा उदारा सर्वे एते ज्ञानी तो आत्मा एव मदम, ये सारे के सारे उत्कृष्ट हैं श्रेष्ठ हैं, मगर ज्ञानी जो है मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव उत्तम अनुतमाम गति, क्योंकि वह मदगत मुद्दी वाला है, अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार वो स्थित है, उसी में स्थित है, भगवान में है, भगवान स्थित है। एते सर्वे उदारा एव, ये चारों भक्त उदार हैं, मगर उदार का मतलब उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, सुकृतन हैं, इसलिए ये मेरे पास आए, अन्य देवता के पास नहीं गए। देखो यहां आपको समझना होगा, ये अन्य देवताओं के पास नहीं गए, ये मेरे पास है। अच्छा, अन्य देवता का जो है ये आपको समझ लेना होगा कि भगवान, जैसे भगवान कृष्ण हैं, उनको यहां पर जो है मत्ता परम नास्ति, इनसे ऊपर कोई नहीं है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। तो उनके नीचे जो है बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से देवी देवता हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो भगवान कहते हैं कि सभी के सब इसके अंदर उदार हैं, ये अन्य देवता के पास नहीं गए, मेरे पास आए, आर्थ भी आया मेरे पास, अर्थार्थी भी आया मेरे पास में, जिज्ञासु भी आया, ज्ञानी भी आया। अन्य देवता के पास ये जा सकते थे, जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना की पूर्ति के चार तरीके आपके पास हैं, क्या चार तरीके हैं? बैंक रॉबरी कर लो, धन मिल जाएगा, एक तरीका। दूसरा जो है किसी धनी की चमचागिरी कर लो, किसी मिनिस्टर की चमचागिरी कर लो, धन मिल जाएगा, मिलेगा ना। या किसी क्षुद्र देवता की पूजा कर लो, यक्ष राक्षस की पूजा कर लो, कुबेर देवता, यक्ष राक्षस की पूजा, या मेरी पूजा कर लो। तो भगवान कहते हैं चूंकि उन्होंने आगे के तीन वालों के पास नहीं गए, वो मेरे पास सीधा आए हैं, मेरी पूजा की है, इसलिए ये सब मेरे भक्त हैं। इनकी चाहत अलग अलग है, इनकी डिमांड जो है अलग अलग है, आर्थ की डिमांड अलग है, अर्थार्थी की अलग है, जिज्ञासु की अलग है, अलग है, मगर वो सब मेरे से प्रेम करते हैं, सब मेरे से प्रेम करते हैं। जैसे माँ के चार बच्चे, माँ के पास चार बच्चे हैं, एक पूजा में सहायता करता है, दूसरा पूजा के टाइम में चिल्लाता है, रोता है, और तीसरा जो है वो बदमाशी करता है, और चौथा जो है वो साड़ी में आके लिपट जाता है। तो देखो किसी को भी माँ जो है छोड़ती नहीं है, जो साड़ी में लिपट रहा है उसको किक नहीं करती है, ऐसा नहीं कहती घर जाओ तुम, चारों से ही प्रेम करती है। मगर आप ख्याल करके देखना, आप लोग सब माता लोग हो, इन चार अगर आपके बच्चे होते तो आपका प्रेम एक के प्रति थोड़ा कहीं ज्यादा होता है, आप सोच जरा खोज के देखना, आपके अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो आप देखेंगे किसी एक के साथ आपका प्रेम ज्यादा है। भगवान के भी ये चार बच्चे हैं, चार भक्त हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान ज्ञानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्ञानी से ज्यादा प्रेम है, ज्ञानी उनका फेवरेट है। ज्ञानी तो आत्मा वे में मतलब, मगर ज्ञानी मेरी आत्मा है, ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवती, जैसे ही हमने जान लिया तो हम तो ब्रह्मन हो गए, हम तो परमेश्वर हो गए, हम परमात्मा हो गए, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मन, ब्रह्मन इज इक्वल आत्मा, ये हमने देखा है। तो जब तुकाराम, रामकृष्ण, तपोवन या चिन्मयानंद जी की बात होगी, ये सब ज्ञानी है, ये सब के सब ज्ञानी हैं। तो भगवान कहता है कि मुझे लगता है मैं तो यही हूं, इन रूप में मैं यहां प्रेजेंट हूं, सच पूछो तो वो हम सबके अंदर में हर रूप में वो ही है, मगर उनको ज्ञान हो गया है, वो ज्ञानी भक्त हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैं शास्त्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, भगवान अपने अनुभव से कह रहे हैं। आस्थित ही स युक्त आत्मा, वह मेरे से सदा ही युक्त है, सब अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। देखो ये यहाँ एक चीज जो है थोड़ी सी सटल है, आपको सूक्ष्म है, समझने लायक है। आत्मनस्तु काम आया सर्वम प्रिय भवती, सब कोई जो प्रेम करते हैं वो अपने लिए करते हैं और अपने को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पति अगर पत्नी से प्रेम करता है या पत्नी यदि पति से प्रेम करती है तो अपने लिए करती है, अपने सुख के लिए करती है। पति अगर पत्नी से प्रेम करता है अपने सुख के लिए करता है, पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो वो अपने सुख के लिए कर रही है। सभी अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने आप को। देखो हमारे ऊपर में अगर कुछ होने आए तो हम पत्नी को भी छोड़ देंगे, हम धन संपत्ति को भी छोड़ देंगे, अपने बच्चों को भी छोड़ देंगे। इसका एक एग्जाम्पल जो है महात्मा लोग ऐसा देते हैं कि एक जगह, ये सच्ची घटना है कि एक जगह बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो उस एरिया के अंदर में या उस गांव के अंदर में जो है बंदर थे, कुछ बंदर के बच्चे थे, तो बंदर के बच्चे तो अपनी माँ को ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, तो बाढ़ का पानी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है पेड़ के ऊपर, और वो बंदरी जो है ऊपर 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 चलती जा रही है, ऊपर पहुंच गई, अब वहां तक पानी पहुंच गया। पता है उसने क्या किया? अपने बच्चे को पानी में डुबा कर उस पर बैठ गई। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने लिए हम सबकी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इस शास्त्र में लिखा है आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रिय भवती। तो भगवान आप जो है ज्ञानी को क्यों सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? क्या बात है? क्योंकि वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा में और ज्ञानी की आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए ज्ञानी मेरे को सबसे प्रिय है। जैसे नदी सागर में जाकर एक हो जाती है और उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह ज्ञानी भी जो है भगवान के साथ में युक्त हो गया, उसका अपना पर्सनल अस्तित्व नहीं रहा, एक हो गया। तो भगवान की आत्मा और ज्ञानी की आत्मा एक है, इसलिए वो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय है। माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्थितः। अनुत्तमाम मतलब अति उत्तम, ज्ञानी मुझको अपना लक्ष्य मानता है, भगवान को ही अपना लक्ष्य मानता है, वह उसमें स्थित है, वह कृतकृत्य है, फुलफिल्ड है और कोई भी उसको विचलित नहीं कर सकता, ऐसी है ज्ञानी की स्थिति। और एक बार उस जगह हम पहुंच जाएं तो फिर क्या होता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पहुंचने के बाद में फिर वापस नहीं आना पड़ता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पहले एकांत भक्ति कहा, वह प्रेम से परिपूर्ण है और मुझको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, ज्ञानी ब्रह्म है। दूसरे भी धीरे धीरे ज्ञानी बनेंगे, हमको सबको ज्ञानी बनना है, भगवान के साथ में एक होना है, ताकि हमारा फिर से जन्म हो सके। आप हो ना यहाँ पर, मैं बीच बीच में आपको जो है हम जब भगवान के साथ एक हो जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा। तो जो परमेश्वर की पूजा करते हैं उनके लिए भगवान ने कहा कि ये उदार हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये पुण्य कर्म करने वाले हैं, ये सुकृतन हैं। तो ज्ञानी क्यों सबसे प्रिय है? क्योंकि वो नित्य युक्त है, उसकी एक भक्ति है, वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि ज्ञानी जो है भगवान की आत्मा है। ज्ञानी की आत्मा और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हम अभी ज्ञानी तो नहीं है मगर हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा में भी फर्क नहीं है, केवल हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है, ऐसा ज्ञानी जो जानता है कि उसकी आत्मा और भगवान की आत्मा एक है, ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है, क्योंकि उसका विजन जो है रेयर है। क्या विजन रेयर है? उसका विजन है वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ जो है वासुदेव ही है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सब ज्ञानी बनना चाहते हैं क्या? सबने हाँ कहा है, ठीक है। तो आप पूछना चाहेंगे कितने साल लगेंगे, कितना समय लगेगा ना, क्योंकि हम लोग पास अभी समय बहुत कम है। देखो, लक्ष्य जितना बड़ा होता है प्रयत्न उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। लक्ष्य जितना बड़ा होता है, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, इससे बड़ा जो है और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही उसके लिए प्रयत्न करना होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल है, आपको मान लो सर्जन बनना है, तो आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी, 12 साल स्कूल में, फिर 4 साल अंडर ग्रेड, उसके बाद में फिर आप जो है मेडिसिन में जाओगे 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितना रेसिडेंसी करना पड़ता है, फिर स्पेशलाइजेशन करना होगा, फिर स्पेशलाइजेशन की रेसिडेंसी करनी होगी। सोचो आप क्या बने, एक सर्जन बने। और जो बने उसका ज्ञान जो है बदलता रहता है, हर रोज जो है नई चीजें निकलती रहती हैं, आप आउटडेटेड हो जाते हो, फिर नए नए उसके अंदर उपकरण निकलते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट निकलते हैं, नए तरीके निकलते हैं। इतना समय आप जो है जब तक आप सर्जन बनते हो, संभवतः आपकी उम्र 30 से तो जरूर ऊपर हो जाती होगी। अगर एक सर्जन बनने के लिए आप 30 साल दे सकते हो तो आप जीवन मुक्त के लिए कितना दोगे, आप विचार कर लो। जीवन मुक्त के लिए क्या समय लगेगा। फिर भी भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इंगित कर देता हूं। 19वां श्लोक,
बहुनाम जन्मनाम अन्ते,
बहुनाम जन्मनाम अन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति,
समहात्मा सुदुर्लभः,
समहात्मा सुदुर्लभः,
बहूनां जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभः।
देखो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। देखो, तत्व ज्ञान होने के बाद में होता क्या है, केवल आपकी दृष्टि बदलती है, सृष्टि नहीं बदलती है। अगर हमें ज्ञान होगा तो उसके कारण जो है सृष्टि नहीं बदलेगी, हमारी दृष्टि जो है सृष्टि के प्रति जो बदल जाएगी। क्या दृष्टि बदलती है, वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ तो वासुदेव ही है। एक वेदांतिन क्या बोलेगा, ये सब कुछ तो आत्मा ही आत्मा है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा कहेगा। क्यों कहेगा, उसने नाम रूप को बाधित कर दिया, इसलिए उसको सब जगह क्या नजर आता है, उसको सब जगह नाम रूप का जो आधार है उसको ब्रह्म नजर आता है। हमें क्या नजर आ रहा है, हमें केवल नाम रूप नजर आते हैं, नाम रूप नजर आते हैं। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्म की साधना से आपको ये प्राप्त होता है, एक जन्म का काम नहीं है, अनेक जन्म। और भगवान ने 6वें अध्याय में कहा, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, ततो याति पराम गतिम। तो आप लोग निरुत्साहित मत हो जाना, हमने तो इस जन्म में स्टार्ट किया, शुरू किया, कितने जन्म लगेंगे। अच्छा, वासुदेव सर्वमिति, यह सब भगवान श्री कृष्ण हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है। तो भक्त क्या कहता है, ये सब भगवान श्री कृष्ण ही है। वेदांतिन क्या कहेगा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है ब्रह्म है और क्या है। भक्त कहता है ये सब कुछ वासुदेव है, और वेदांतिन कहेगा ये सब कुछ ब्रह्म है, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, इस प्रकार सब कुछ वसुदेव ही है, वासुदेव है, इसका प्रकार इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो देख पाता है। जैसे ज्ञानी सब जगह ब्रह्म देखता है, वैसे ही भक्त सब जगह वासुदेव को देखता है, वही परम है। स महात्मा सुदुर्लभ है, महात्मा महान आत्मा यश है, एक महात्मा ये दुर्लभ है, इस किस्म का महात्मा जिसकी दृष्टि बदल गई, जो सब जगह वासुदेव को देख रहा है, श्री कृष्ण को देख रहा है, ऐसा ज्ञानी ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बहुनाम जन्मानंते, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्म में क्या किया हम लोगों ने, हमने पिछले सब जन्मों के अंदर अपनी वासना को बढ़ाया है। पिछले जितने भी हमारे जन्म हुए हैं उन सब जन्म के अंदर हमने एक ही काम किया है, अपनी वासना को बढ़ाया है। अब हमने कुछ पुण्य कर्म किए, हमने पहले ही देखा हम सत्संग में बैठे हैं तो इसलिए हमने जरूर पाप कर्म किए हैं, हमने जरूर पुण्य कर्म किए हैं इसलिए हम सत्संग में बैठे हैं। अच्छा ये जान के रखना ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, इस इज ऑल प्री प्लान्ड सब है। जिसके जिसके पुण्य जितने जितने फ्रक्टिफाई होंगे उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो बिना सत्संग के हम आगे बढ़ नहीं सकते और बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिल सकता, बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिल सकता और बिना सत्संग के हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है आप जब आ गए हो तो आस्ते 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 आपको ज्ञान मिलता जाएगा। तो मैं अभी भगवान कहने जा रहे हैं कि मैं आपको जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की मतलब क्षुद्र देवता, उनको क्षुद्र मतलब उनकी शक्ति कम है, अल्प देवता जिनको कहते हैं, उनका क्या होता है, और जो मेरी पूजा करते हैं वासुदेव की पूजा करते हैं, जो वासुदेव सब जगह आत्मस्वरूप सब जगह हैं, क्षुद्र देवताओं की जो पूजा करते हैं उनका क्या होता है। तो भगवान जो है 20 से लेके 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की पूजा करने वालों की चर्चा करते हैं। अच्छा 20वां श्लोक,
कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैरितज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्न देवताः, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया।
यह सर्व जगत आत्मस्वरूप वासुदेव ही है इस प्रकार न समझने आने के कारण बतलाते हैं। क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वासुदेव हैं, कहते हैं कामई तय तई हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों की भोगों की कामना होती है, जैसी जैसी कामना होती है, तो वो क्या करते हैं, उनका ज्ञान हर लिया गया है, उनको ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है कि एक जो है वासुदेव भी हैं, ऐसा ज्ञान उनको नहीं है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर प्रकृतिया नियता स्वया, अपनी प्रकृति के स्वभाव अपनी वासना के अनुसार वो क्या करते हैं, प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए वो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, हम देखेंगे उसको। स्वया प्रकृत्या नियता, स्वया प्रकृत्या नियता में ये देखो चौथवा पाद है, हम जो भी कामना करते हैं ना, जो भी हमारे भीतर में कामना आती है, वो कैसे आती है? हमारी वासना के हिसाब से। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारी वासना के अनुसार हमारी बुद्धि के अंदर में कामना आती है, और हम अपने राग द्वेष को, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, राग और द्वेष को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कामना प्रकट हो जाती है, डिजायर एक्सप्रेस कर जाती है, और नहीं तो हम उसकी चेष्टा करते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं। देखो क्या क्या कामना है। देखो ये कामना आपकी नहीं भी हो सकती है, मगर संसार में लोगों की होती है, आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए। ताकि ऐसी कामने वाले लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहे हैं। कैसी कैसी कामना होती है? मोहनम, किसी को मोहित करना, भ्रमित करना। दूसरे लोग चाहते हैं कि आपको भ्रमित कर दें। स्तंभन, किसी को इमोबाइल कर देना, ये बढ़ रहा है, ये धनी हो रहा है, कैसे इसको अटकाएं, ये बहुत ज़्यादा जो है कार्यरत है, इसको कैसे इमोबाइल कर दें, कैसे इसका हाथ पांव का तोड़वा दें। आकर्षण, तंत्र मंत्र से किसी को आकर्षण करना। आपकी उम्र ऐसी नहीं रही है कि आपको जो है कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो उसको आकर्षण, तंत्र मंत्र लगाओ, वो लड़का मेरे पास आ जाए या वो लड़की मेरे पास आ जाए, ये सब होता है तंत्र मंत्र से आकर्षण। वशीकरण, किसी को बस में करना, ये मरे बस में हो जाए, वशीकरण। मरणम, किसी को मारना है। उच्चाटन, किसी को भगाना है घर से। ये सब हमारी कामना नहीं है, मगर अज्ञानी लोग के अंदर ये सब कामना बहुत होती है, प्रतिस्पर्धा होती है बहुत सारी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक ओवर की स्पर्धा होती है, उसको टेक ओवर कैसे कर लें, बहुत किस्म के काम करते हैं लोग, बहुत किस्म के काम करते हैं। कोई कंपटीटर होगा, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो एक छोटा व्यवसायी है, एक बड़ा व्यवसायी है, एक बड़ी कंपनी है या एक छोटी कंपनी है। एक साधारण सा एग्जांपल ले लो, एक कलम बनाता है, दोनों ही कलम बनाते हैं, और कलम बनाने का मान लो आपको कॉस्ट आता है ₹1। अब बड़ी कंपनी अगर 50 पैसे में बेचना शुरू करे, छोटी कंपनी उससे कम्पीट कर पाएगी? नहीं। तो क्या करेगा बड़ी कंपनी? बोले तुम्हारा आप जो है जो एस्टेब्लिशमेंट है मेरे को दे दो, मेरे को बेच दो। अब वो ₹1 की कलम ₹5 में बेचेंगे, हुआ ना, हटा देना। इसी तरीके से जो है अज्ञानी लोग जो है ऐसे बहुत कुछ करते हैं। सबकी अपनी अपनी वासना है। देखो एक सिंपल सा उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने परिवार के साथ या बंधुओं के साथ में किसी एक जो है पैलेस को देखने गए, किसी राजमहल को देखने गए, तो हर व्यक्ति को आप देखिएगा, उसका अट्रैक्शन एक एक वस्तु अलग अलग होगी। किसी को पेंटिंग अच्छी नजर आएगी, किसी को फर्नीचर अच्छे लगेंगे, हैं? तो डिफरेंट चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं आदमी को, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो इनके लिए जो है वो क्या करते हैं, जब ये सब करना होता है, मोहनम, स्तंभनम, आकर्षण, वशीकरण, मरणम, उच्चाटन, तो उसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। कहां जाएंगे ये लोग? ये लोग उस ऐसे टेरिबल देवता के पास में जाएंगे जहां पशु बलि होती है, काला जादू होता है। तो ऐसा नहीं कि ये सब देवता नहीं है, ये सब देवता हैं, ये देवता हैं, और उनकी पूजा की विधि है, उस पूजा की विधि के हिसाब से आप उनकी पूजा कर दो, वो आपका काम कर देंगे। तो ऐसे लोगों का भगवान कहते हैं कि उनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखो समाज में भी, देखो अन्य देवता की बात छोड़ो, यहां का तो मेरे को मालूम नहीं, भारतवर्ष में आप किसी को किसी की टांग तोड़वानी हो ना तो वहां गुंडे मिलते हैं, मरवाने की तो बात दूसरी है, किसी को अगर हत्या करनी है वो भी हो जाता है, गुंडे मिलते हैं। उनको पैसे दे दो, वो पता नहीं बंबई में क्या कहते हैं, सुपारी दे दो उसको, सुपारी फिक्स सम, पैसे दे दो वो काम कर देंगे आपका, ऐसा होता है वहां पर। तो अन्य देवता नियम पालन, ठीक मंत्र उच्चारण तथा विधि से पालन करने से कामना पूर्ण होती है, मगर वासुदेव जो हैं वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, वो जो है अपने भक्त की भलाई चाहते हैं। आप अगर इस काम के लिए वासुदेव को अगर पूजा करोगे तो वो आपकी कामना पूर्ण नहीं करेंगे। आप किसी को दुख देना चाहते हो, मारना चाहते हो, वशीकरण करना चाहते हो, उच्चाटन करना चाहते हो, मोहित करना चाहते हो, तो वो आपकी कामना पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान उसमें भी बैठे हुए हैं। वो आपको पाप कर्म से बचाएंगे, वो नहीं करने देंगे, मगर छोटे छोटे देवता वो कर देंगे, वो कर देंगे। सो जो परमेश्वर के पास जाते हैं वो सात्विक हैं, और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, परम प्रेम से, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो जो क्षुद्र देवता के पास में जाते हैं उनको परमात्मा कभी नहीं मिलते, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती है, कभी मुक्ति नहीं होती है। तो भगवान ये अन्य देवता भी तो आपके ही सब अपॉइंटेड है ना, आपने ही तो डिपार्टमेंटल हेड बनाए हुए हैं सबको, तो उनकी पूजा करने वालों के साथ में आप क्या करते हैं? ऐसे भी तो आपके बहुत से भक्त हैं जो इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, हैं? उन लोगों के साथ में आप क्या करते हैं? तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं,
यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तामेवं विदधाम्यहं, तामेवं विदधाम्यहं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तामेव विदधाम्यहम्।
तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, हम केवल इसका शाब्दिक मीनिंग देख लेते हैं, इसको फिर हम अगले दिन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो जो साकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अच्छा, आपको ये पूजा अच्छी लगती है, ये देवता अच्छे लगते हैं, ठीक है आप यही पूजा कीजिए, ऐसा भगवान स्थिर कर देते हैं, आपकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। मगर उसे परमेश्वर प्राप्ति नहीं होगी। हमें ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या पाना चाहिए। दूसरों को मोहित करना, स्तंभन करना, वशीकरण करना, उच्चाटन करना, ये सब हमारा काम नहीं है, ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें वासुदेव की पूजा करनी है और निष्काम भाव से करनी है। हाँ, हमको आर्त भी नहीं बनना है, हमको जिज्ञासु बनना है ताकि हम ज्ञानी बन सके, और अर्थार्थी नहीं बनना है। देखो, आर्त और अर्थार्थी को क्या मिलता है, अनित्य वस्तु मिलती है, अनित्य वस्तु मिलती है। भगवान आगे जाके कहेंगे ये सब अल्प मिलसा है, इनका ज्ञान जो है, इनकी बुद्धि अल्प है, छोटी बुद्धि वाले हैं। मैं आपको नित्य वस्तु दे सकता हूँ, आप मेरे से अनित्य मांग रहे हो। देखो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, वही सब बहुत साफ साफ समझ में आएगा कि हम भगवान के पास में जाते हैं मंदिर में तो क्या मांगते हैं। अब अगली बार जाओगे तो फिर आपको याद आ जाएगा कि हम नित्य वस्तु मांग रहे हैं, क्या नित्य वस्तु मांग रहे हैं, क्या मांगना चाहिए भगवान से। इक्कीसवां श्लोक हम अगले दिन देखेंगे। ओ
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्।